بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. یہ آیات جو ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ بہت دور رس اشارے دیتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا بندوں کے درمیان کے تعلق کو ظاہر فرماتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ وسائل اور ذرائع کو اصل سمجھ لیتا ہے. وسائل و ذرائع بھی اللہ ہی نے رکھے ہیں، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ وسائل و ذرائع کے سے ہی کرتا ہے وہ، لیکن کرتا اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہم انسانوں میں اس کی مثالیں اللہ نے رکھی ہیں کہ ہم تلوار استعمال کرتے ہیں، ہم تبر استعمال کرتے ہیں، ہم اوزار استعمال کرتے ہیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کرتے ہیں، سب اوزار کر رہے ہیں. اب ہم سواری استعمال کرتے ہیں تو ہم کو پہنچا دیتی ہے وہ، تو وہ سواری ذریعہ بنتی ہے ہمارے پہنچنے کا. لیکن یہ کہ ہمارے کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سواری جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، وہ خود سے نہیں پہنچا سکتی، وہ کھڑی ہے. آپ کتنی کوشش کریں، خواہش کریں، کتنا آپ کو کتنی طلب ہو، لیکن وہ آپ کو نہیں پہنچائے گی جب تک آپ اس سے کہیں گے نہیں کہ ہمیں پہنچاؤ. اس کو استعمال نہیں کریں گے اب تک وہ گاڑی. آپ خواہش کتنی ہو، آپ گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر روئیں، لجاجت کریں، تو بھی گاڑی آپ کو نہیں پہنچائے گی. اس لیے کہ اس کے اختیار میں نہیں، وہ تابع ہے، گاڑی بنانے والے کے تابع ہے. جس نے گاڑی بنائی ہے، اس نے جو پرزے رکھے ہیں، جس حساب سے رکھے ہیں، اسی حساب سے وہ کام کریں گے. تو پرزے اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے. پنکھا آپ نے چلا دیا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو بند نہیں کریں گے. وہ ہوا دے رہا ہے، آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن وہ خود کچھ نہیں، وہ ذریعہ ہے. تو جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، یہ سب होता तो ज़राए से है, लेकिन ज़राए खुद इख्तियार नहीं रखते, ज़राए खुद इख्तियार नहीं रखते। और अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए एक हद तक इंसान को इख्तियार दिया है, एक हद तक दायरे में। जैसे किसी को एक मकान, वसी मकान में बंद कर दिया जाए, वो कहा तुम इस मकान में यहाँ जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो, ये मकान बाहर नहीं जा सकते, मकान के बाहर नहीं जा सकते, वहाँ जाने का इख्तियार आपको नहीं है। जो आप किसी कमरे में चले जाइए, किसी गैलरी में चले जाइए, चाहिए पलंग पर लेट जाइए, चाहिए कुर्सी पर बैठ जाइए, सब आपको इख्तियार दिया है उसने, जिसने आपको बंद किया है, लेकिन आप बाहर का इख्तियार नहीं। तो एक छोटे से दायरे में अल्लाह ने इंसानों को इख्तियार दिया है, और वो भी आजमाने के लिए, कि इख्तियार से आदमी कितना करता है कितना नहीं करता, इख्तियार से वो अपनी ख्वाहिश पे चलता है या अपने पदरब की ख्वाहिश की पसंद पर चलता है, ये देखने के लिए। और बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं, खालिक को, मालिक को क्या चीज़ें नापसंद हैं और क्या चीज़ें पसंद हैं। अब आपकी पसंद इन्हें अल्लाह की पसंद के साथ क्या मामला करती है, इसको देखना है। और इसके लिए अल्लाह ने तराजू मुकर्रर कर रखी, जो तराजू की शक्ल उसमें तुलता है, कितना आपने अपनी अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद पर तरजीह दी। और वही तरजीह जो है वो तो नजर आने वाली चीज नहीं है, लेकिन वो हकीकत में वजन रखती है। जितनी तरजीह आपने दी है अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद के मुकाबले में, उसका उतना वजन है, वो वजन वहाँ पर बनता चला जा रहा है, और उसी वजन के मुताबिक अल्लाह ताला हिसाब करेगा। हिसाब करने के लिए कि कितना वजन है, उस वजन के मुताबिक अल्लाह उसको जजा देगा। तो ये यहाँ पर ये वाक़ियात अम्बिया के बताए गए हैं, अब नबी जैसे लोग उनके साथ भी अल्लाह का मामला इंसानों का है, फरिश्तों वाला नहीं मामला, कि फरिश्तों को तो इख्तियार भी नहीं है, वो अल्लाह की पसंद ही पर चलते हैं। जैसे आप पंखा आपके चलाने पे चलता है, इस तरह फरिश्ते भी जो अल्लाह चाहता है वो करते हैं, अल्लाह का चाहना काफ़ी होता है। यहाँ तो हमें बटन दबाना पड़ता है, बटन दबाने से वो काम चल जाता है, अल्लाह को बटन दबाने की जरूरत थोड़ी, अल्लाह का चाहना काफ़ी, ये हो जाए हो जाएगा, फरिश्ते फौरन करेंगे वो काम जो अल्लाह चाहेगा। हर चीज़ में अल्लाह ने जो खसूसियात रख दी हैं उन खसूसियात वो खसूसियात चल रही, जैसे पंखा चल रहा है, दरख्त आपने पौधा लगाया, अब उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो चलेगा, इसलिए वो अल्लाह का बनाया हुआ प्रोसीजर है, वो दरख्त की उसमें कोई खसूसियत नहीं है, दरख्त ताबे है, जो उसके अंदर अल्लाह ने जो उसका मुकर्रर कर दिया है वो अपने चलेगा। आप चाहें तो वो आपके चाहने पे नहीं होगा, लेकिन एक दायरे में इंसान के चाहने का इख्तियार अल्लाह ने रखा है, और वही अमाल शुमार होते हैं, और उन्हीं के वजन से आदमी की आखरत के हालात मुतय्यन होंगे, वहाँ की ज़िंदगी मुतय्यन होगी। तो आप देखिए इस वाक़ियात बयान किए, एक तरफ तो अल्लाह ने बयान किया कि हमने इंसानी ताकत से ज़्यादा ताकत भी दे दी जिनको चाहा, हर सुलेमान को दे दी, हर दाऊद को दे दी, लोहे को मोड़ लेते हैं, लोहा उनके लिए पिघल जाता है, हाथ में काबू में आ जाता है, हर सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अल्लाह ने कुदरत दे दी, ताकत दे दी कि वो हवाई जहाज की तरह जा रहे हैं, बड़ा जहाज जैसे जाता है, और कहा कि उस जमाने में जो जहाज ईजाद नहीं हुआ था तो लोगों का ताज्जुब होता है इस बात पर कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसे हवा के ऊपर एकदम से पहुंच जाएंगे, हवा कैसे उनको ले जाएगी। लेकिन अब ये जो नई इजादात हैं ये तस्दीक करती हैं उन चीज़ों की कि जो उनको बताई गई हैं कुरान मजीद में। अब क्या सीडी क्या है, सीडी के अंदर पूरे पूरे कुछ तूफाने आ गए हैं, अब इसके बाद करामन कातिबीन को समझना क्या मुश्किल है। पहले देखते थे कि भाई कांधे में कैसे बैठे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, कैसे कागज वहाँ है, कैसे लिखते हैं, करामन का दिन आसर अमाल और जो इंसान के जो हाल है, जो काल है, वो सब वो लिख रहे हैं। लिख रहे हैं मतलब कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं समझ में आता था, अब आप देखिए कैसे है? इतनी सी 3D के अंदर सारी तस्वीरें और सारे अल्फाज आ जाते हैं। ये इंसान को अल्लाह ने इतना इख्तियार दे दिया है, तो अल्लाह ताला के इख्तियार की कोई बात, तो सबके आमाल और सबके अहवाल वो किरामन कातिबीन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब ये CD वहाँ अल्लाह ताला दिखाएगा सबको, जाता है कि आमालनामा क्या है, वो CD है वहाँ जो खुलेगी तो आदमी देखेगा हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये कहा, हमने ये किया, तो अल्लाह ताला फरमाएगा अब तुम बोलो तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए, बोलो। मुजरिम अपने जुर्म करते हुए पकड़ गया, अब मुजरिम क्या कह सकता है? मुजरिम को आप जुर्म की हालत में पकड़ लें तो मुजरिम क्या कहेगा आपसे, सिवाय खुशामद करेगा, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, पकड़ा दीजिए, ये तो नहीं कह सकता हमने नहीं किया। और वहाँ ये है कि वहाँ माफ़ी नहीं, वहाँ तो जो किया है वो तो मिलेगा। और साफ साफ आता है कि जो वो कहेंगे हमें दोबारा भेज दिए दुनिया में, हम अच्छे अमल करके आएंगे, और नहीं, हमने नबियों के जरिए से अपनी किताबों के जरिए तुमको खूब समझाया था, वहाँ सब तुमको बता दिया गया था, तुमने नहीं माना, अब तो भुगतना है। तो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर समझना और किरामन कातिबीन को समझना तो क्या कर रहे हैं, इस पर बड़ा इंसार है, बड़ा इंसार है। अल्लाह ताला जिसकी कुव्वत ये है कि वो उसने ये सारी कायनात बनाई, आसमान जमीन बनाए, जो नजर यहाँ नजर आजीद आ जाती नहीं जाती, वो उतना बड़ा उसे आलम बनाया, वो कितना बड़ा होगा, वो तो जाहिर साबित, उससे हम नहीं डर रहे हैं। और एक मामूली अफसर से डरते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें उस बात पर यकीन नहीं, जब यकीन नहीं है तो फिर उसका मतलब जाहिर उसका जो नतीजा होता है वो सामने आएगा। तो अल्लाह ताला ये दिखा रहा है कि सब अल्लाह ताला के सामने छोटे हैं, तो मानी किसको किसको बड़ा समझ लेते हो। नबी के साथ भी अल्लाह का ये मामला है, एक तरफ अल्लाह ताला ने ये दिखाया कि कुछ लोगों को, कुछ नबियों को इस मकाम तक पहुंचा दिया कि हवा के दोष पकड़े चले जा रहे हैं, वो शयातीन को और जिनों को मजबूर कर रहे हैं कि घुसो समंदर में, बनाओ महल, बनाओ ये करो, और वो सब मजबूरन बना रहे हैं। कि आगे कुरान में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इंतकाल हुआ तो इंतकाल का पता नहीं चल सका, इसलिए कि वो उनके जो इस पर टेक लगाए हुए थे वो उसी पर खड़े हुए थे, सब कर रहे थे, जिंदा हैं, काम कर रहे थे। तो आता है कुरान मजीद में कि उनको मालूम हुआ कि सुलेमान के इंतकाल हो गया तो अफसोस करने लगे, काश के पहले मालूम होता है तो हम कहा कि मुसीबत में पड़ लेते, हम तो काम कर रहे थे डर के मारे, जब नहीं रहे तो हम आजाद हो जाते। तो उनको इख्तियार इतना दे दिया अल्लाह ने, दिखाया कि जिसको हम चाहते हैं जो दे देते, जिसको जो चाहते हैं इख्तियार दे देते हैं, जिसको जो चाहते हैं मकाम दे देते हैं, सब हमारे सामने ताबे। तो हज़रत सुलेमान का वाक़या बताया, हज़रत दाऊद का वाक़या बताया, और हज़रत मरियम का वाक़या बताया कि यहया का वाक़या, किस तरह गैर मामूली बात हुई जो हो नहीं सकती दुनिया में, वो अल्लाह ने कर दी, इतने ऊँचे मकाम पर पहुँचा दिया। और उसी के साथ ये भी दिखा रहा है अल्लाह ताला कि नबियों को भी उन हालात से गुजरना पड़ा जो तो आम इंसान गुजरते हैं। पहला वाक़या हज़रत अय्यूब का है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनके हवालात थी, उनके बागात थे, उनकी जायदाद थी, वो खुशहाल वक्त थे, वो सब जल जला गया, सारी औलाद सारे मुतालिकीन सब का इंतकाल हो गया, बिल्कुल तन्हा रह गए, तन्हा भी रह गए और हर चीज़ से मारूम और बीमार हो गए उसके साथ। ऐसी बीमारी कि जिसमें हरकत करना मुश्किल, बिल्कुल बेसहारा। दिखाया अल्लाह ने कि नबी है, लेकिन ना दिखाया, गुजारा अल्लाह ने। इंसान समझे इस बात को कि वो अल्लाह के बिल्कुल इख्तियार में है, घमंड नहीं होना चाहिए उसको कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं। जब नबी को अल्लाह ताला इस तरह दिखा सकता है, तो दुआ की अल्लाह ने दिखाया, दुआ को भी हम सुनते हैं। बड़े से बड़े मर्ज को हम दूर कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत को हम दूर कर सकते हैं। और तय्यूब ने दुआ की, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से, अल्लाह ने बहाल कर दिया, उनके सारे जख्म खत्म हो गए, उनकी बीमारियां खत्म हो गईं, और एकदम से औलाद होना शुरू हुई और सब, और फिर जायदाद बनना शुरू हो गई, और कुछ दिनों में वो अपने वही खुशहाल और आसाब औलाद सब हो गए। वायूब इजनादा, वायूब इजनादा रब्बहू अन्नी मस्तनी अंत अरहमुर्राहिमीन। उनका है परवरदिगार, हम तकलीफ में मुब्तला हैं और आप अरहमुर्राहिमीन हैं। बस उन्होंने गुड़गड़ा के दुआ की, वो माता फसल जब मैं लहू, हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। यानी उनकी दुआ से नहीं, हमारे कबूल करने से हुआ, दुआ कबूल कर ली, दुआ कबूल कर ली, कस्सा खत्म। फकशफ नाम आ बही मिन दुर्रिन, और उनको जो तकलीफात थी उसको हमने खोल दिया। वह आता ना अहलहू मिसलहू माहूँ, और उनको अहल आयाल हमने अता कर दिए, और उन जैसे और मजीद दे दिए। माहूँ रहमतम में निंद देना, ये हमारी तरफ से उनके साथ रहम का मामला हुआ। रुजिकराल आबदीन, यही नहीं बल्कि जो इबादत गुजार हैं, जो वफादार हैं, नेक लोग हैं, उनके लिए ये एक ये उनको याद दहानी के तौर पर, उनको याद दहानी हो गई, जो नेक लोग हैं, जो ईमान रखते हैं, उनकी याद दहानी हो गई कि उनको मजीद ये बात, उनका यकीन बढ़ गया इस बात पर। उनको पहले से यकीन था कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, और सब अल्लाह के सामने ताबे हैं, किसी का कोई जोर नहीं है, और बड़े से बड़े को अल्लाह नीचे कर सकता है और नीचे को ऊपर कर सकता है, और करके दिखा दिया उसने। नबियों के साथ ये मामला किया, आम इंसानों की बात छोड़िए, और ये बता दिया कि मांगने से हमसे जो और दिल लगा के और गड़गड़ा के मांगता है तो हम उसको देते हैं। मिसाल दी, जिक्रा लिलाबिदीन, इबादत गुजारों के लिए ये चीज याद दहानी का बायस है, तो याद रखें इस बात को, कितनी ही इबादत करें लेकिन इसको समझें कि अल्लाह के सामने हम बिल्कुल बेबस हैं, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, हम चाहे इबादत में ढेरों इबादत कर डालें, लेकिन अल्लाह को अगर कबूल है तो ठीक है, नहीं तो हमारा कोई हक नहीं है। क्या तय्यूब के साथ हमने दिखा दिया कि कहाँ से नीचे उतारा, और फिर जब उन्होंने मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने कबूल कर लिया, उठा दिया। खुद नहीं कर सकते, खुद वो कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं था कि वो बीमार हो गए थे तो इलाज करके अच्छे हो जाते। अल्लाह ताला ने उसको, उन्होंने इलाज किया होगा, लेकिन इलाज में अल्लाह ने उसको इजाजत नहीं दी जाती, दवा उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ने निज़ाम बनाया है कि जराए काम करते हैं, और ख़ासतौर इस दुनिया के अंदर तो ये निज़ाम बनाया है, इसलिए अल्लाह ताला अपनी मर्जी के खिलाफ करते देखता है तो कुछ नहीं कहता, इसलिए आखिरत में उसकी सजा होगी। और इसीलिए लोगों के यहाँ ये है कि दुनिया में अगर सजा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आखिरत की सजा से तो बच जाएंगे। तो फरमाया रुजिकदार इलाबिदीन, इबादत गुजारों के लिए जो वफादार इबादत गुजार हैं उनकी याद दहानी इसमें है कि उनका ख्याल ये ताज़ा हो जाएगा कि हमारी इबादत से कुछ नहीं होगा, हमारी ख्वाहिश से कुछ नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो होगा, इसलिए अल्लाह से मांगो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, उसके सामने उसी तो उम्मीद कायम करो, तब काम का बनेगा। तो इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्क़िफ़्ल कुल्लुम मिन साबिरीन, और कई नबियों का नाम दिया, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्क़िफ़्ल, ये सब उनका हाल ये रहा है कि इनको सब्र करने वालों में रहे, इन्होंने इन्होंने सख्त हालात में इनको गुजरना पड़ा है। जाहिर है इस्माइल को वाकई तो मालूम है कि उनको बिल्कुल शिरखार बच्चे थे, ले जाकर सहरा में छोड़ के चले आए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी माँ के साथ। न पानी था न खाना था कुछ था, वह अपने नज़दीक कुर्बान करके चले आए थे। तो उसी में उनका नशोनमा हुआ, उन हालात में कैसे हज़रत इस्माइल जिंदा रहे, कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की उन्होंने। फिर तो उसके बाद ये हुआ कि उनको ज़बह करो, और ये सिर्फ यही नहीं हज़रत इब्राहिम को ज़बह कर देते, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि हमको ये हिदायत मिल रही है ख्वाब के जरिए से। उनका ज़र्फ़ देखिए हज़रत इब्राहिम इस्माइल का कि अब्बा जान फिर जब हुक्म है तो आप कीजिए तैयार। इससे बड़ा सब्र क्या हो सकता है। कुल्लू मिन साबिरीन इन्हम मिन ये लोग फरमाया कि ये इस्माइल इद्रीस ज़ुल्किफ़्ल के वाक़ात को देखो, कुल्लू मिन साबिरीन ये सब सब्र करने वाले थे, यानी इन्होंने बड़ा सब्र का सबूत दिया था। उनके हालात बयान नहीं किए अल्लाह ताला ने, उसको सब्र कह दिया, और उसने इस्माइल के वाक़ा सबको मालूम, बचपने से लेकर जवानी तक के वाकयात पर हम गौर कर लीजिए तो कौन है ऐसा इतना बर्दाश्त करेगा जो हज़रत इस्माइल ने बर्दाश्त किया। नहीं, उनके वाकयात देखिए, आखिर में ये कि वो अपनी जान दे दें और तैयार हो जाएं वो जान देने पर। कुल्लु मिन साबिरीन वअदखलनाहुम फी रहमतिना, हमने उनको अपनी रहमत के अंदर दाखिल कर लिया, उनके सब्र का हमने सिला दिया। इन्नहुम मिनस्सालिहीन, ये लोग अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे जिन्होंने अच्छा सबूत दिया इताअत का, इबादत का, और अपनी उज़न्नूने ज़हरा मुगाज़िबन फ़ज़लना अल्लान नक़दर अलैह फ़नादर फ़ज़लमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। फ़ज़लनून हज़रत यूनुस का वाक़िया देख लो, नबी थे, दावत दे रहे थे, अपनी कौम को कौम मान नहीं रही थी, उन्होंने आखिर में ही कहा कि अजाब आएगा, उनको इशारा मिला होगा कि दो तीन लोग जल्दी ही अजाब आ जाएगा। कहते अजाब में देर हुई आने में, अब ये परेशान हुए कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे कि अजाब कहते थे कहाँ है अजाब, तो ये वहां से चले गए, हट गए वहां से शर्मिंदगी तौर। अब गए तो दरिया रास्ते में दरिया था, पार होना था, और वो जो मल्लाह थे वो लोगों को उतारते थे, उस पर ये बैठे पार होने के लिए, तो नाव इतनी भारी हो गई कि वहां उधर डूब जाएगी। अब लोग परेशान हुए नाव वाले, तो उन लोगों का कुछ अकीदा वगैरह था कि अगर कोई शख्स कोई नाफरमान अपने आका का नाफरमान होता है तो नाव उसका उसके साथ नाव का बर्ताव अच्छा नहीं होता। तो उनका मालूम होता है कि नाव पर कोई ऐसा आदमी भी है हम में से जिससे जो अपने मालिक का नाफरमान है, भाग रहा है अपने मालिक के आका से, कोई गुलाम है। तो कुरा डाला गया तो जून उसका नाम निकला, तो उनका कि ठीक है इनको उतार दो। अब वो बीच समंदर में वहीं उनको उनका कि हम तैयार हैं, उनको समंदर वहीं पानी के अंदर डाल दिया गया, एक मछली ने फौरन उनको निगल लिया। मछली को अल्लाह का हुक्म हुआ कि इनको तुम खाना तुम्हें खा नहीं सकते, इनको खाना नहीं बल्कि हिफाजत करना है इनकी। अल्लाह ताला बता रहा है कि हमारी कुदरत देखो, नबी है हुआ, उनको एहसास हो गया अपनी बात का। जब वो समंदर के अंदर पानी के अंदर वो तैयार हो गए उतरने के लिए, वहाँ उन्होंने दुआ की उन्होंने कि ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ए परवरदिगार, आप ही परवरदिगार हैं, आप ज़ात बड़ी पाक और पाक है, मैं हूँ खताकार, आपकी जात तो बहुत पाक बहुत बुलंद है, मैं हूँ खताकार। अल्लाह ताला को उनकी ये दुआ قبول ہو گئی, پسند آ گئی, بس وہ اللہ کا حکم ہوا, مچھلی نے ان کو لے جا کے اگل دیا کنارے پر. اب وہ ایسی حالت میں تھے کہ مکھی لگے تو تکلیف ہو, اندر رہنے کی وجہ سے جس ان کا بالکل جیسے گل جاتا ہے, یعنی بہت حساس ہو گیا تھا. ایک درخت وہاں اللہ نے پیدا کر دیا, اس نے سائے میں لے لیا, درخت کا نام آتا ہے. اور بعض لوگوں نے اس درخت کو وہاں دیکھا, اس علاقے میں وہ درخت ہوتا ہے یہاں ادھر نہیں ہوتا, بڑے بڑے پتے اس کے اور خاص کرنے, اس نے ان کو ڈھانک لیا تاکہ ان کو سایہ رہے اور دھوپ نہ لگے, اور وہ اچھے ہو گئے. دو تین روز میں اچھے ہو گئے ہوں گے, دو چار روز, اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اجازت دے دی. وہ لوٹ کے آئے, یہاں قوم کا معاملہ یہ ہوا, تنہا یہ قوم ایسی ہے, اللہ فرمایا ہے قرآن مجید میں, تنہا یوں قوم ایسی ہے جو عذاب سے ڈر کر اور وہ نیک بن گئی. ادھر یہ ہوا کہ عذاب آیا اور جو آسمان پر جو طوفان آیا اس میں آگ کے شعلے بھی نظر آئے ہوں گے, جو کچھ بھی ہو, لوگ ڈر گئے, آثار دیکھتے ہی ڈر گئے, اور سب مل کر گھر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور رونا دھونا شروع کیا اور گڑگڑانا شروع کیا, اللہ سے معافی مانگنا شروع کی, اور عذاب اللہ نے واپس کر دیا, واپس ہو گیا وہ, اور اللہ نے معاف کر دیا ان کو, قوم کو. اور یونس آئے تو دیکھا قوم جو ہے وہ عذاب آیا تھا واپس ہو گیا, اور قوم جو ہے وہ نیک بن گئی ہے کہ وہ رہے اپنے قوم میں. تعداد بھی آتی ہے کہ کتنے لوگوں کی قوم تھی قرآن میں, ابھی دوسری جگہ بتا ہے کہ اور نون کا واقعہ دیکھو, نبی تھے لیکن کس مرحلے سے ان کو گزرنا پڑا. ان کو یہ خیال ہو گیا کہ اللہ, وہ تو ان کو وہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا, یعنی بڑے کی معمولی غلطی بھی پکڑ میں آتی ہے, تم چاہے کچھ ہو جاتا میں وہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے, کیوں ہٹ. تو اس ہٹنے کا ان کو بھگتنا پڑا اتنا, لیکن پھر انہوں نے جو روئے دھوئے اور دعا مانگی, اللہ دکھاتا ہے کہ ہم نے اس کا دعا قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سب ہم کرتے ہیں, تم کس دھوکے میں ہو, اور ہم سزا بھی دیتے ہیں معاف بھی کرتے ہیں, ہم اٹھاتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں, یہ جتنی شکلیں ہیں سب ہم کرتے ہیں, تمہیں نظر آتا ہے کہ تم کرتے ہو, یا یہ ذرائع کرتے ہیں یا وسائل کرتے ہیں, یہ ہم کرتے ہیں. اس دھوکے میں نہ رہو کہ وسیلہ کچھ ہے, وسیلہ اور ذریعہ ایک بہانہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ اس سے کرتا ہے, وسائل کے ذریعے سے کرتا ہے, لیکن کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہے. فرمایا کہ وہ ناراض ہو کے ادنون غالباً, اور جب وہ کچھ ناراضی لے کے چلے گئے, وزن اللہ نقدر علیہ, اور انہوں نے شاید یہ خیال کیا کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے, یعنی کیسے چلے گئے, کیا ان کو یہ خیال نہیں ہوا کہ ہم پکڑ سکتے ہیں, اس پر ہم معاوضہ کر سکتے ہیں, اللہ نقدر علیہ کہ ان پر ہم قدرت نہیں رکھیں گے. ظلمات, لیکن پھر وہ انہوں نے تاریکیوں کے اندر یعنی مچھلی کے پیٹ میں آواز لگائی اور کہا, پروردگار آپ ہی ہیں ہمارے پروردگار, آپ کی ذات بڑی پاک ہے, میں ہوں ظلم کرنے والا, میں ہوں غلط کار, بس تجمنا لو, ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. سب اپنی طرف نسبت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے دعا قبول کر لی, یعنی دعا مانگنا کافی نہیں تھا, دعا کو قبول ہونا تھا, ہم نے قبول کر لیا, ہمیں اچھا لگ گیا, ان کا مانگنا پسند آ گیا, ٹھیک. وہ نجینا الغم میں, اور ان کو اس مصیبت سے ہم نے نجات دے دی. وہ کذالک ننجی المؤمنین, اور یہی ہے ہمارا طریقہ کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں, کذالک ننجی المؤمنین, یہ ہے ہمارا طریقہ کہ ایمان رکھنے والوں کو ہم نجات دیتے ہیں. وہ زکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اور زکریہ کا واقعہ دیکھو, کوئی اولاد نہیں تھی, اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, بیوی بوڑھی ہو گئی تھی کہ اولاد کو سوال نہیں تھا, امکان نہیں تھا, لیکن بنی اسرائیل کا حال ایسا تھا کہ زکریہ کو ये एहसास हुआ कि हालात अच्छे नहीं हैं कौम के। हम जो कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं दीन के लिए, इस्लाह के लिए, हम चले जाएंगे चंद दिन में, जाहिर हम बूढ़े हो गए हैं, फिर क्या होगा, ये कौम तो मान ली फिर क्या करेगी, कोई नज़र नहीं आता जो जो इस्लाह का और फिक्र करे। वो कोई हालात नहीं थी। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, उन्होंने आवाज़ लगाई जगरिया ने कि परवरदिगार हमको तन्हा न छोड़, और बेहतर वारिश तो आप ही हैं, यानी बाद में आने वाले को वारिश कहते हैं, यानी ये सही है कि आप रहेंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं, और हमको तन्हा न छोड़िए कि हमारा सिलसिला ख़त्म हो जाए। फर्स्ट अजमना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल कर ली, वो हमने लहू याहया और उनको याहया जैसा बेटा अता किया। वहाबा का लफ्ज़ है, हिबा किया, अता किया, याहया जैसा बेटा अता किया, जिनका जिक्र दूसरी जगह आता है कि उनको अल्लाह ने याहया को बहुत खूबियाँ अता फरमाई, बदतमीज़ तो नबी बनाया उनको अल्लाह ताला ने। वो हमने लहू याहया और यहाँ हमने अता किया, वाफला ने लहू रोजा, उनकी बीवी को ठीक कर दिया। वो बच्चा देने के हाल में नहीं थी, कर दिया उनको हाल में, इसलाह कर दी उनकी। और इन्नहुम कानू यसारून अल खैरात, फरमाया क्यों किया हमने, ये लोग खैर के कामों में बहुत तेजी दिखाते थे, कानून सारे हों नफिल खैरात, ये खैर के कामों में बहुत तेजी दिखाते थे और हमको पुकारते रहते थे, हमसे मांगते रहते थे, दुआ करते रहते थे, रग़बत के साथ भी और खौफ के साथ भी, यानी उम्मीद भी करते थे और डरते भी थे। दो चीज़ें बताई गई हैं, अल्लाह से उम्मीद कायम करना और डरना भी, कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, हमको सज़ा भी दे सकता है, हम रद्द भी कर सकता है हमको, और ये उम्मीद कि अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, उससे वो हमको अता भी कर सकता है, हमको दो चीज़ें हैं, रग़बत और रहमत। वो हमको पुकारते थे ये लोग, रग़बत और रहमत दोनों से, खौफ और रजा दोनों कर दी। वो कानु लना खाशीन, और हमसे बहुत डरते थे, इन खौफ खुदा बहुत था इनमें, इसलिए हमने उनको उनकी ऐसी दुआ कबूल कर ली जो आम हालात में नहीं होती। और फिर फरमाया कि देखो मरियम को देखो, कुल्लती हसनत फरजहा फनफखना फी अमरूहना, कि वो खातून कि जिन्होंने अपने शर्मगाह को बहुत महफूज रखा, यानी मरियम जिस तरह थी, उनको वक्फ कर दिया गया था इबादत खाने के लिए, वो ज़माने वक्फ किया करते थे, और खातून और इबादत खाने में की जिम्मेदार, कितने खतरात उनको पेश आते थे जवानी, और उन्होंने अपनी हिफाजत की और अपने को महफूज रखा। अल्लाह को ये बात पसंद आई, फनफखना फिया मिन रूहिना, हमने उनमें वो बात पैदा कर दी अपनी तरफ से, रूह से, कि जो मर्द के ज़रिए से होता है, अल्लाह ने वो चीज़ उनमें असर डाल दिया, रूह, और उनको फिर उनको भी और फिर उनके बेटों को भी हमने सारी दुनिया के लिए, आलमों के लिए निशानी बना दिया। अतीसा और मरियम का वाकया अलामत बन गया कि अल्लाह ताला क्या क्या कर सकता है। तो फरमाया कि इन हाजी उम्मतों को उम्मत वायदा, लेकिन ये सब एक ही उम्मत है, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग ज़माने में थे, अलग अलग कौमों में थे, लेकिन सब एक ही खानदान है, ये उम्मत एक ही उम्मत है। वान रब्बुकुम, तुम सब के हम रब, हम तन्हा हम रब हैं, लिहाजा फाबदून, लिहाजा हमारे तुम बंदे, मेरे बंदे बनो, फाबदून मेरी इबादत करो, मेरे बंदे बनो। मगर क्या है, वो तकातव अमरहूम बैनहूम, लेकिन लोगों ने अपने को खुद टुकड़ों में बांट लिया है, अलग अलग अपना हिसाब बनाया है। हमने सबको एक खानदान बनाया, सारे नबी एक खानदान है, सारे नेक लोग सारे ईमान वाले एक खानदान है, चाहे किसी जमाने में हो, एक ही सिलसिले की लड़ी में है। लेकिन लोगों ने अपने को टुकड़ों में बांट लिया, तखत हम रहूं बह न हूं, अपने मामले को बांट लिया और कुल्लू निराजों, लेकिन सबको हमारे पास लौट के आना है। ये नहीं कि मामला खत्म हो गया, मामला खत्म नहीं हुआ, जो कुछ किया है वो लेके आना है हमारे पास, हमारे सामने हिसाब देना है तुमने ये क्यों किया, हमने तुमको क्या कहा था और क्या तुम्हें जिम्मेदारी डाली, वही अमल में नुस्खा लिहा तो मोमिन फला कुफरान।